निजी पर या इसे अन्य है पर या ये तन्मय द्रव्य से तत् समहतः अनन्य है।
अपेक्षा से द्रव्य है नहीं अनवचनीय है नहीं इस तरह ही अब शेष तीनों भंग है।
पर्याय शाश्वत नहीं परंतु है विभाव स्वभाव तो है अफल परम धर्म परंतु क्रिया अफल नहीं कही।
नाम नामक कर्म जिय का पराभव कर जीव को नर नार की तेरे अंच सुर पर जाय में दाखिल करे।
नाम नामक कर्म से पशु नरक सुर नर गति में स कर्म परिणत जीव को निज भाव उपलब्धि नहीं।
उत्पाद वे ना प्रत्येक क्षण उत्पाद वे मैं लोक में अन्य है उत्पाद वे अवेद से है एक भी।
वसे ही अवस्थित संसार में कोई नहीं संग शरण करते जीव की यह क्रिया ही संसार है।
कर्म मल से मलेन जिय पा कर्म युत परिणाम को कर्म बंधन में पड़े परिणाम ही बस कर्म है।
परिणाम आत्म और वह ही कहीं जीव मई क्रिया वह क्रिया ही है कर्म जी द्रव कर्म का करता नहीं।
कर्म एवं कर्म फल अर ज्ञान में चेतनाए तीन इनके रूप में ही परिणमे है आत्मा।
ज्ञान अर्थ विकल्प जो जिए करे वही कर्म है अनेक विध वह कर्म है अर कर्म फल सुख दुख है।
ज्ञान कर्म कर्म फल परिणाम तीन प्रकार है आत्मा परिणाम में परिणाम ही है आत्मा।
जो श्रमण निश्चय करे करता कर्म 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 फल ही जीवना पर रूप हो शुद्धात्म उपलब्धि करे।
प्रयोजन सार कलश पद्य अनुवाद।
जिसने बताई भिन्नता भिन्न द्रव्य निसे और आत्मा एक और को हटा दिया।
जिसने विशेष किए लीन सामान्य में और मोह लक्ष्मी को लूट कर भगा दिया।
ऐसे शुद्ध नयन दुभट विवेक से ही निज आत्मा का स्वभाव समझा दिया।
और संपूर्ण इस जग से विरक्त कर इस आत्मा को आत्मा में ही लगा दिया।
इस बात पर परिणति का उच्छेद कर करता कर्म आदि भेदों को मिटा दिया।
इस भांति आत्मा का तत्व उपलब्ध कर कल्पना जन्य भेद भाव को मिटा दिया।
ऐसा है आत्मा चिन्ह मात्र निर्मल सुख में शांति में तेज अपना लिया।
अपनी ही महिमा मय पर काशमान रहेगा अनंत काल जैसा सुख पा लिया। बस अब आदरणीय दादा का प्रवचन प्रारंभ होता।
संतप्त मानस शांत हों जिनके प्रवचन सार परमागम की 123 24वीं गाथा चल रही है ना। 123 माने 1 2 3 1 2 3 सब अपने बोलता है, बोलते हैं ना बोलियां, बड़े सो पावे 1 2 3 ये गाथा अपनी चल रही है। और इसमें सीधी सरल भाषा में ये कहा है कि कर्म एवं कर्म फल अज्ञानमय है चेतना। चेतना तीन प्रकार की है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इसमें तो उल्टी लिखी है, पहले कर्म और कर्म फल लिखी फिर ज्ञान लिखी। तो छंदानुरोध से जहां जो जगह बैठती है वहां डाल देते हैं, लेकिन उसका ये नहीं समझना चाहिए कि वो कर्म है। वैसे भी हम कह भी सकते हैं कि अनादिकाल से इस आत्मा को कर्म और कर्म फल चेतना है। ज्ञान चेतना तो संबंध इसी को पैदा होती है बाद में ही, चेतन स्वभाव तो उसका है। निगोदिया का भी ऐसा नहीं कि उसमें चेतना नहीं है, चेतना माने ज्ञान दर्शन नहीं है, लेकिन जिस समय ज्ञान को जिसमें हम चेतने की बात कहते हैं, तो भाई चेतना चेत। मुझे याद है कि जब सबसे पहले मेरे पास आत्मधर्म आया था सन 76 में, तो पहला अंक निकाला था भाई जी, तो उसमें एक हेडिंग था चेत चेत चेत, उसका हेडिंग ये था चेत चेत चेतना। समझे मैंने चेतता क्यों नहीं है, चेत चेत चेत, ऐसा एक हेडिंग दे करके एक दो पेज का मैटर पूज्य गुरुदेव श्री का था, वो मैंने दिया था पहले अंक में। अभी निकालोगे तुम्हारे पास रखा होगा फाइलें, तो तुम देख सकते हो संजीव है ना। तो क्या चेतना तीन प्रकार की है, कर्म एवं कर्म फल और ज्ञानमय है चेतना। ये तीन इनके रूप में ही परिणमय है आत्मा। तो ये तीन चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, तो ये आत्मा स्वयं इन तीन चेतना रूप परिणमित होता है। माने जो स्वयं परिणमित हुआ तो फिर यही कर्ता हो गया ना, कर्म चेतना का भी, कर्म फल चेतना का भी और ज्ञान चेतना का भी। कल जिसका अपन ने वजन दे के अर्थ बताया था कि ज्ञान अर्थ विकल्प जो जिये करे वह ही कर्म है, अनेक विध वह कर्म है, अर कर्म फल सुख दुख है। वह सरल है, अर्थ विकल्प को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान अर्थ विकल्प है ना, और जो जीव जो करता है उसे कर्म कहते हैं है? और अनेक प्रकार का वह कर्म है, और कर्म फल क्या है, जीव का जो सुख दुख रूप भोगना वो कर्म फल है। इस सुख माने वो अतीन्द्रिय सुख नहीं लेना, वो मोक्ष वाला सुख भी नहीं लेना और मोक्ष के मार्ग वाला सुख भी नहीं लेना। जैसे संसार में शुभ कर्म के उदय से जो इष्ट संयोग वगैरह होते हैं उनमें जो आत्मा अनुकूलता का वेदन करता है वो सुख, वो वास्तव में दुख का ही एक भेद है। तो वो सुख दुख जो रूप परिणमित होना और उसको उसमें ही चेतना माने और उसका ही पता चलना। जैसे एक आदमी है उसे बहुत तकलीफ है, नंग नंग उसका दुख रहा है, तो हम उससे कहें कि भाई इस देह से भिन्न तेरा आत्मा है कि इधर बहुत दर्द है। हमने क्या कहा, इधर भी है। उसकी चेतना उसमें ही चेत रही है। यहां प्रवचन में भी बैठा होगा ना, तो 24 घंटा उसका वेदन होता है, अकेले दुख रूप चेतना की बात नहीं है, सुख रूप यदि कोई अनुकूलता वाली बात हुई हो तो वो घंटे बैठे उसको ही में चेतता रहता है, हमारा प्रयोजन ऐसा ऊपर से चला जाता है। जागृत अवस्था में भी मतलब सोने की अवस्था की बात नहीं है, वो उसकी जागृति किस बात में है, जो लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता है उसमें ही है क्या, अपने आत्मा के कल्याण के किसी बारे में भी कुछ है। अपन बहुत गंभीरता से विचार करते हैं, उत्तम जैन जी साहब ये अपने यहां इतने लोग बैठे हैं ना, इसमें साधारण परिस्थिति के लोग भी हैं, रूखी सूखी दो रोटियां कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं और जिंदगी चलाते हैं, और अरबपति लोग भी बैठे होंगे, लेकिन मैं एक बात पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि सब 24 घंटा वो जो वो परिग्रह नाम का जो है ना, समझे ना, उसकी निरंतर वृद्धि कैसे हो इसके ही चिंतन में रहते हैं, उसी के प्रति चेतते हैं, और जो भी काम करते हैं सुबह से शाम तक, यद्यपि यहां विद्वानों से सुनते सुनते कान पक गए हैं कि पुण्य का उदय नहीं होगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा, ऐसे अनेक पाप भाव करने से क्या होता है, ख्याल में आई कि नहीं आई, लेकिन उस पर भी श्रद्धा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बात सत्य है, घबराना नहीं, कैसे मिलता है क्या मिलता है उसकी जब मैं व्याख्या करूंगा वो कभी अलग बात है, अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि वो निरंतर सारी जिंदगी उसमें चेते, और सपना आता है तो उसी का आता है, हम सपने में भी प्रवचन कर देते हैं। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं 9 दिन तक बेहोश रहा था, दिल्ली में था जतिसराई, तो वो वेंटिलेटर पे था, लोगों ने तो समझ लिया था कि वेंटिलेटर पर 9 दिन रहने वाला लोग आता थोड़ी है वापिस, तब भी मुझे पक्का याद है कि मैंने पूरा प्रवचन कई दफे किया उस बेहोशी में भी, और उन डॉक्टरों ने और नर्सों ने सुना, तो जब मैं जो होश आया पीयूष, तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने वो हमको रिक्शे वाली कहानी सुनाई थी उसकी कोई किताब है, मैंने कहा हाँ किताब है, होश में, तो बोले आपने कहा था हमसे कि वो हम आपको देंगे, तो मैंने इन लोगों से कहा पीयूष वगैरह ये लाओ जल्दी, और सब डॉक्टरों को वो किताब दो, किताब दी तो वो बोले सचमुच बात तो ये है कि हमें पढ़ने का समय नहीं है, हमें तो आप सीडी दे दो तो हम कदाचित सुन भी लेंगे, माने वो जो धुन लगी रहती है जिसकी वो 24 घंटा लगी रहती है, तो जो आपने अपना काम बना रखा है धंधा कमाने का उसका उपयोग, उसको सपने भी वैसे ही आता है, आज इतना पैसा कमा लिया, आज इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, हमारा लोहारिया है ना, कौन अशोक लोहारिया अभी चला गया ना मुझे, तो वो ये क्या कहता था कि जैसा होता है उसको वैसे ही विकल्प आते हैं, कोई महिला है ना तो उसे सुबह से उठते ही क्या विकल्प आते हैं कि पति को ऑफिस जाना है, बेटे को स्कूल जाना है, उसे चाय बनाना है, उसको ये बनाना है, तो ऐसे ही विकल्प आते हैं सुबह से उठकर हो जाना है? कभी कभी सपने में आते हैं, जो अपना जिस काम को समझता है वो उसे उसी जाति के विकल्प आते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो तो ये है कि पैसा कमाया और सबका पेट भर गया, भूखा कोई नहीं रहा, लेकिन वो गरीब आदमी ने कभी थोड़ा माल मसाला भी खाया होगा, और ये अरबपति ने तो मूंग की दाल और रूखी रोटी के अलावा कुछ खाने को इसे मिला ही नहीं होगा, खा ही नहीं सकता, डॉक्टर परमिशन नहीं देता है। हमारी बात छोड़ो, हम तो आपका माल हमें इतना मिलता है कि हम घी में ही डूब रहे हैं, आप खिलाते हो, घर का माल नहीं खाना है, तो अभी हम रूखी रोटी के अलावा हम कुछ खा ही नहीं पाते हैं। मैंने वो भोगने का उतना बात नहीं है, लेकिन तो भी कमा कमा करके ये लिया, सबने पेट तो भरा है, चाहे सही भरा हो, लेकिन जिसने आत्मा की साधना की, स्वाध्याय किया, कुछ जनवाणी की सेवा की, आगामी पीढ़ी को तक वो संस्कार पहुंचाने का काम किया, तो उसने कुछ किया। नीतीश भाई, उसने कुछ किया, उसका वो कुछ सेवा में काम में है। अभी तुम लोग इतने विद्यार्थी तैयार हुए, हम 7,500-7,750, तो ये तुमने कुछ किया, तुमने पाया है कुछ, और जीवन में कुछ करना है, कर सकते हो। दो रोटियों का काम भी चलेगा ही, भूखे मरने वाले नहीं हो। जिन धर्म की आराधना करने वाला और निरंतर स्वाध्याय में रहने वाला कोई भूखों मरने की तो गारंटी से है ही नहीं। और इससे बड़ी उपलब्धि होगी। मान लो हमने जो किया, जनवाणी की सेवा की, इतनी किताबें लिखी, समय सार अनुशीलन जो भी लिखा भाई कुमार जी, आपने भी जो किया, तो वो सब इस समाज के काम भी आएगी, और उसने हमारे उपयोग को भी निर्मल किया। और वो मेरे कहने का मतलब है, इसे अपन कहते हैं ना कि भैया इस भव के लिए तो बहुत किया, अब कुछ अगले भव को भी करो। अब मैं तो इस लेन पे आ गया हूं कि हमें भव चाहिए ही नहीं, ना इस भव में के लिए ना अगले भव के लिए, तो भी वो अगले भव के लिए हुआ तो है ना। क्यों? जो परिणाम में निर्मलता रही वो अगले भव के लिए कुछ हुआ कि नहीं हुआ कैलाशन जी? अब आप लोग सोचो अगले भव के लिए क्या हुआ? फिर अगली रोटी तो कमाई खाएं। हम जब पढ़ते थे तो वो लकड़ी की पाटी होती थी, समझ गए ना, स्लेट तो बाद में आई। लकड़ी की पाटी को ऐसा कोयले से लगा लगू कर तो घोंट घोंट के क्यों और वो करके उस पर लिखना पड़ता था, तो उसे सुखाना पड़ती थी, वो लगा देते थे, समझे ना। तो ऐसे ही कर करके हम घुमाते थे, बोलते थे कुएं का पानी कुएं में जाइए, मेरी पाटी सूख जाइए। यही है ना, आप इधर आए थे, अपने बाप दादों में पैदा हुए, करोड़पति के घर में भी पैदा हो सकते हैं, गरीब के घर में भी पैदा हो सकते हैं, और फिर जब गए तो करोड़ों छोड़ के भी जा सकते हैं और साथ थोड़े कम छोड़ के भी जा सकते हैं, दोनों बातें बन सकती हैं ना। तो वही हो गई ना कि कुएं का पानी कुएं में जाइए और मेरी पाटी सूख जाइए। सचमुच ये गंभीरता से विचार करने की बात नहीं है। मुझे आज विद्यार्थियों को कुछ कहने का विकल्प आ रहा है कि तुम लोग ने जो रास्ता चुना है वो रोटियों की तो बात बिल्कुल विकल्प ही नहीं है। आज गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया कर दिया है कि अध्यापकों की तनख्वाह लाख लाख रुपया, मेरे कई विद्यार्थी 2-2 लाख रुपये महीना पाते हैं, अध्यापक हैं, बस पढ़ाने का 2 घंटे काम करते हैं बस। आजीविका और आराम की आजीविका, इसका तो अब विकल्प ही नहीं रहा। लेकिन तुम लोग चाहो तो हम धर्म की सेवा, समाज की सेवा ये भी कर सकते हो अपनी इस योग्यता के जरिए, बाकी के अभागे लोग नहीं कर सकते। कुछ अन्यथा नहीं लेना, लेकिन अंतर समझाने के लिए कहता हूं। जो बहुत बढ़िया पढ़ करके फर्स्ट क्लास फर्स्ट आकर के आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, क्यों? तो उन्हें धर्म का कितना ज्ञान होता है, मैं उसकी कोई समीक्षा नहीं करना चाहता हूं। कितना ही बढ़िया बड़ा पंडित हो जाए, वो एक तो हो गई नहीं, कहां से होगा, आज तक तो एक हुआ नहीं, तो अभी वो समाज में रहने वाला है नहीं है, तुम्हें प्रवचन करने के लिए उपलब्ध होने वाला नहीं है। जिस गांव में रहेगा उस गांव में प्रवचन नहीं करेगा, कलेक्टर साहब आगे प्रवचन करेंगे तुम्हारे मंदिर में, बोलो कर सकते हैं, एसपी साहब प्रवचन करेंगे, और ये साधारण मास्टर जहां होगा वहां करेंगे। बोलो गुलाब चंद जी, आपने मेरे दिमाग को घुमा दिया, इसलिए मेरा दिमाग उधर ज्यादा घूम रहा है। बुरा मत मानना कि वस्तुतः बात क्या है। महीपाल जी, महीपाल जी की एक स्थिति आई थी कि वो राजकुमार चले गए थे और कोई दूसरा अच्छा विद्वान नहीं मिल रहा था। मैं कहा आप चिंता मत करो, इसको बंद करने की किसी कीमत पर मत सोचना। बोले महीपाल जी यहां बैठे हैं मेरे सामने, जो भी होगा जैसे भी होगा हम सब करेंगे, हमारे यहां है हम उनको भेज देंगे, लेकिन तुम विद्यालय को बंद करने की नहीं सोचना, नहीं सोचना। एक बहुत महान कार्य तुमने अपने जीवन में, महीपाल जी जो जो आपके काम का हिसाब अंत में वो चित्रगुप्त करेगा ना, तो वो सबसे ऊपर की लेन में तुम्हारा ये काम लिखा जाएगा। मैं इसकी महिमा बताना, किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसकी महिमा बताना चाहता हूं कि इसमें सबका हित कैसे है। यानी वो बहुत बढ़िया बन जाएंगे, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, हम उनका सम्मान भी करेंगे और करना चाहिए, किया भी है, वो उसका निषेध रूप बात नहीं है, लेकिन अब उन कलेक्टर साहब का प्रवचन कब होगा है? क्यों कब हमारे काम है, कब वो हमारे बच्चों की क्लास लेंगे है? कैसा उनमें संस्कार आ जाएंगे। अजय हमारे राजेंद्र बैठे हैं, कह दूं मैंने इनसे पूछा कि आप ने आपको एक छात्रावास में पढ़े थे, जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो जो एक छात्रावास में पढ़ते थे सर, हमारी शादी के साथ भी बाद भी पढ़ते रहे, हमें साले साहब हैं, तो वहां पढ़ते थे, बीकॉम किया, क्या किया, जो भी किया इनने, फिर भी इनने तो उग्र पुरुषार्थ से पंडित भी बन गए, प्रवचन भी करने लग गए, इतना स्वाध्याय किया। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाले 100-200 लोग तो होंगे, यहां थे, तो उनमें से तुम कितनों को बता सकते हो कि उनमें कुछ धार्मिक संस्कार हैं। बहुत माथा ऐसा ऐसा किया, एक का भी नाम नहीं बता पाया कि नहीं है कोई। अच्छा कि नहीं है कोई एक भी, तो इनने कहा बचाव किया कि नहीं साहब, उस वक्त संस्कार देते थे, क्या संस्कार देते थे, आलू नहीं बनेंगे, रात्रि भोजन नहीं होगा, ये खाने में नहीं बनेगा, समझना मैं क्या कहना चाहता हूं, समझना तुम लोग, ये बाकी लोग समझे नहीं समझे, मैं तुम्हें समझाना है। अभी मैं ये अध्याय पूरा करूंगा सोचा करूं, फिर बाद में प्रवचन बंद करूंगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन चालू रखूंगा। कौन सा अध्याय? सामान्य द्रव्य प्रत्याख्यान, वो अधिकार है ना, 126 तक वो करूंगा, चालू रखूंगा। पीयूष जी अभी मैं क्या कह रहा था कि संस्कार, मैंने कहा अब वो आलू तो नहीं खाता होगा, कोई 2-4 पहचान में हो तो एक राउंड लगाओ और देख के आओ कि वो आज भी संस्कार उसमें हैं। तो बोले एक भी नहीं है, सब महाभ्रष्ट हो गए हैं। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा फिर भी आप उसी रास्ते पे हैं, फिर भी अपने बच्चों को हमारे यहां क्यों नहीं भेजते, फिर भी आप उसी रास्ते पे क्यों जा रहे हैं। ये बात मैंने अपने प्राइवेट घर में इनसे कही थी, लेकिन मेरे मन में नहीं पची तो सबको कहने का भाव आया कि आप यदि इतना स्पष्ट देख रहे हैं तो फिर दोनों में क्या अंतर है, क्यों समझ में आए ना, कि आप इतना पीछे क्यों पढ़ते हैं कि महाविद्यालय खोलो, विद्यालय खोलो, विद्यालय खोलो, विद्यालय में दो, सब एक एक, एक, एक पसेरी धान है। ये हमारे विद्वान आगे खड़े हुए हैं ये, और वो उनके खड़े हुए हैं वो, इनका भविष्य और उनका भविष्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये समाज के लिए, खुद के लिए, आत्मकल्याण के लिए, जैन धर्म के लिए इनकी कितनी क्या उपयोगिता है, हैं? मुक्ति के मार्ग में किनका क्या योगदान होगा भाई जी, ये हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आज तक मैंने ये चर्चा नहीं की कभी, लेकिन आज मुझे भाव आया कि ये अंतर समझाना चाहिए। अभय कुमार जी, आपसे तो कई दफे बात हुई होगी, कोई विचार आज के नहीं है मेरे, तो मैंने अपना जीवन इसके लिए ही समर्पित किया है और ये प्रतिज्ञा की है कि अपना जीवन का एक एक मिनट इसका अकाउंट करो, एक एक पैसा जो आप लोग हमारी संस्था को देते हैं और एक एक तरह के और साधन और लोगों की सेवा, इस सब का उपयोग जैन तत्व ज्ञान के पढ़ने पढ़ाने वालों में ही मैं करूंगा और जब तक मेरा बस चलेगा और किसी में नहीं करने दूंगा। आप कोई बड़े से बड़ा आदमी ये सिफारिश लिख करके भेजना मेरे को कि हमारा लड़का आईएएस में जा रहा है, 5 दिन की ट्रेनिंग में है, तो इसको रहने का और भोजन की व्यवस्था आप करा देना क्योंकि ये बाजार में नहीं खाता, नहीं होगी मेरे यहां। कौन? अरे कोई भगवान महावीर भी लिखेगा तो नहीं होगी, समझ में आया ना? क्योंकि मैं अपनी शक्ति, मैं अपना उसमें नहीं गिरना चाहता हूं, मैं सब बच्चों बच्चे को मालूम है, सब जानते हैं, मैं ये बात वैसे कहता नहीं हूं क्योंकि सब लोग हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं भी खूब हृदय से उनका समर्थन करता हूं कि वे सब बातें ठीक है, उनसे तो अच्छे ही कि जो अपने लौकिक में रह जाते हो अनुभव कारमंत भी नहीं जानते, लेकिन असली मूल्यांकन तो होना चाहिए, असली चीज तो हमारी समझ में आना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप है। बोलो हम नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? कल हम मर जाएंगे तो कोई कहने वाला मिलेगा क्या? तुम लोगों में हिम्मत है कहना? डरना नहीं किसी से, वो सेठियों के चक्कर काटने वाले पंडित मुझे नहीं चाहिए, जिनके सेठिया चक्कर काटते हैं ऐसे पंडित चाहिए। क्या अंतर है? देखो, ज्ञान अर्थ विकल्प, इसका अर्थ अपन कल कर रहे थे और मैंने कल बताया था कि ये अर्थ विकल्प क्या है? तो इसमें अर्थ का क्या अर्थ बताया है कि स्व और पर में विभक्त जो संपूर्ण लोक माने विश्व, उसका नाम है अर्थ। ये तुम्हारे अर्थशास्त्र वाला अर्थ नहीं है, समझे ना? सारी दुनिया को बोलते हैं अर्थ है? और उसका आकार का अवलोकन, ऐसा लिखा ना, आकार का अवलोकन। ये क्या है आकार का अवलोकन? माने उसको जानना। क्या प्रतिभाषा लिखा ना? क्या लिखा? प्रतिभाषा अभिभाषण, आकार का अभिभाषण, तो जानने ही अर्थ है, तो ये इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। तो अभिभाषण होता है, जानता थोड़ी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिंदी में ऐसा होता है, संस्कृत में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है, एक होता है कर्ती बात, एक होता है कर्म बात, एक तो एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस, होती जानते ना? तो कहीं एक्टिव वॉइस में है, कहीं पैसिव वॉइस में है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता। राम ने रावण को मारा, एक वाक्य तो ये है, और दूसरा रावण राम के द्वारा मारा गया, एक वाक्य है, वो एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। आप समझ गए ना? इतना व्याकरण तो सब लोग अच्छी तरह समझते हैं, क्या फर्क है इसमें? चाहे चक्कू को कद्दू पर मारो और चाहे कद्दू को चक्कू पर मारो, कटना तो कद्दू को ही है, चक्कू तो कटने वाला नहीं है, मरना तो रावण को ही है। चाहे ऐसा कहें कि रावण राम के द्वारा मारा गया और चाहे ऐसा कहें कि राम ने रावण को मारा, तो इतना अंतर डाला क्यों? इसलिए डाला कि हमें राम को बचाना है, क्योंकि हत्या का अपराध राम के माथे मरकर कहीं उन्हें जेल ना हो जाए कि उन्होंने एक आदमी की हत्या करी। किसकी? रावण की। जो मारना तो हत्या है ना, तो हत्या वाला अपराध उनके माथे पे नहीं मरना है। तो कहेंगे उनने तो बहुत कोशिश की, बहुत समझाया कि हमारी सीता वापस दे दो तो तुम आराम से रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं माना, आखिर उनके हाथ से मारा गया, उनके हाथ से मारा गया वो रावण। माना मरने की क्रिया का कर्ता रावण है, राम नहीं। ये साधारण सा नियम है कि कर्ता करण की जगह कर्ता हो जाता है और कर्ता की जगह कर्म हो जाता है, बस एक ऐसे बदलते रहते। तो ऐसे ये ज्ञान के जानने में आता है, सारा दुनिया उनके ज्ञान में झलक गई, अवासन हो गया, ऐसी कहो तो सारा आत्मा ज्ञान उनको जानता है। इतना है ऐसा, ये एक्टिव पैसिव ब्रेस का कमाल है। अब हमें उसमें से गंभीर अर्थ दिखाई देने लग गया, ख्याल में है ना। देखो क्या कह रहा हूं, ज्ञान अर्थ विकल्प, तो अर्थ का अवासन, इसका नाम है ज्ञान चेतना। इसका ज्ञान में तो यही ज्ञान चेतना है। हाँ, सामान्य ज्ञान चेतना तो यही है जो निगोद से लेकर मोक्ष तक होती है। लेकिन इनने कह दिया ना, स्व और पर के भेद में विभाजित संपूर्ण विश्व, उसके आकार का अवलोकन, उसके आकार का क्या प्रतिभासन, अपभाषण चाहे प्रतिभाषण अपभाषण कितना ही देर में लगा दो उपसर्ग, ये तो बेचारे शब्दों के उपसर्ग होते हैं ना, मुनिराजों के उपसर्ग होते हैं ना, ऐसे शब्दों पे भी उपसर्ग लगते हैं। आपको मालूम है कि नहीं, 20-22 उपसर्ग होते हैं, अपना परिसर भी 22 होते हैं ना, उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं ना, 22 उपसर्ग होते हैं। जैसे प्रा अब ऐसे ऐसे दो गम धातु है, अब गम गच्छ धातु जाने के अर्थ में है, अब उसमें आ लगा दो तो आगच्छति माने आना हो जाएगा, फिर प्रति और लगा दो, प्रति आ गच्छति तो लौटना हो जाएगा। मैंने जितने जितने लगाते जाओगे उतने उतने अर्थ बदलते जाएंगे। क्या है वो छंद बोलना, अपने बलात् अन्यत्र नियते, हाँ, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते, उपसर्गों के द्वारा धातु का अर्थ जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है, अर्थ बदल जाता है बिल्कुल। उपसर्ग ये जो शब्द है ना, इनमें दो ही जगह लगते हैं उपसर्ग, लेकिन जो शुरू में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, जो अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, समझे, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो उनसे एक वचन का बहुवचन होता है, स्त्रीलिंग से पुलिंग होता है, उनका ऐसा होता है, तीता अंति लगते हैं ना, उसके हिसाब से एक वचन बहुवचन ये सब चलता है। तो ये इस भाषा के कमाल में तुम आ गए, ये इसका ऐसा अर्थ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा न्याय व्याकरण भी आना चाहिए, थोड़ा ये भी आना चाहिए। प्रोग्राम जी ने लिखा मोक्ष मात्र का तक मैं पढ़ लो, क्या लिखा है बोलो, प्रवीण हो करके फिर अपने अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन में जीवन लगाना, क्योंकि उसके बिना जैसा अर्थ चाहिए वैसा अर्थ अभाषित नहीं होगा। यानी आप लोग इधर पढ़ने आए हैं तो जीवन में ये कोई गलती हो गई ऐसा एक सेकंड को भी आपके चित्र में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात बताई है। जो नहीं आए वो दूसरी जगह चले गए, उनसे तो क्या कहें, वो तो यहां है ही नहीं। ये उनसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ख्याल समझ रहे ना, वे तो यहां है ही नहीं सुनने को, तो उनसे हम क्या कहेंगे, और वे हमारी सुनेंगे कलेक्टर साहब, चलो मारा अपने टीका टीका में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अधिकांश सब बातें बता दी थी, लेकिन अब अपन वृंदावन दास जी का, मैं गुरुदेव का भी एक आध पैरा सुनाना चाहता हूं, निकालो आगे पेज नंबर 152 पर पांजी स्वामी इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। तो पेज नंबर 253 पे तीसरी पंक्ति पढ़ना है, मैं पढ़ता हूं, तीसरी गद्य में तो पढ़ लूंगा, है ना। सुनो, आप लोग निकाल लो, इसमें आ गई, ठीक है, चलो। मैं भूल जाता हूं, मुझे दिखता नहीं है ना, एक और मेरे में खराबी हो गई है, मैं इसे ज्यादा मुड़ के नहीं देख सकता, गर्दन ज्यादा मुड़ती नहीं है, अभी मैं ऐसे गर्दन मोड़ के पढ़ के नहीं सकता है, तो भूल जाता हूं कि यहां आ रहा है जी। तुम लोग देखते हो ना उधर, मैं समझता हूं आप मुझे देख रहे हैं वहां देखते हो ना। देखो, कोई कहता है, ये निकालना भैया, कोई कहता है, ये गुरुदेव श्री का कोटेशन है बसंत भाई, कोई कहता है कि हमने अकेले आत्मा को जाना है, किंतु विकार और पर पदार्थों को नहीं जाना, अथवा वे ख्याल में नहीं आते, तो उनसे आत्मा को भी यथार्थ, तो उसने आत्मा को भी यथार्थ नहीं जाना। वह ज्ञान चेतना नहीं कहलाती। और कोई कहे कि हमने पर पदार्थ और निमित्तों को तथा विकार को जाना है, किंतु हमें आत्मा का ख्याल नहीं आता, तो उसने पर पदार्थों को भी यथार्थ नहीं जाना, वह भी ज्ञान चेतना नहीं कहलाती। स्व को यथार्थ जानने पर पदार्थ जानने में न आए, ऐसा होता ही नहीं, और स्व के भान बिना एकांत पर संबंधी ज्ञान के उभार को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ये लब्धि सार ना, दिव्य ध्वनि सार है ना, उसके पेज नंबर 398 पे इधर आ गए हैं। क्या इससे इसमें कोई और स्पष्टता चाहिए? ये दोनों का ज्ञान एक साथ ही होता है, थोड़ी मुख्य गुण होता है त्रयोपशम ज्ञान में, लेकिन यहां तो जो ज्ञान चेतना किसको कहा, केवल ज्ञान को ज्ञान चेतना कहा है, मूल गाथा में और टीका में केवल ज्ञान को ज्ञान चेतना कहा है। फिर आगे उन्होंने ऐसा बता दिया कि भाई अब मन पर जो सम्यक ज्ञान है ना, चौथे गुण स्थान से लेकर, उसको भी ज्ञान चेतना में ले लो, सम्यक दृष्टि की, अनुवृत्ति महावृत्ति की, इनकी भी ज्ञान चेतना मान लो, लेकिन मूलता तो वही है बड़ी ज्ञान चेतना। ज्ञान अर्थ विकल्प, अर्थ का विकल्प, अब अर्थ का विकल्प, अब ये तो अभी अर्थ का अर्थ हुआ, अब विकल्प क्या है? मैं आपको कई दफे कह चुका हूं, कहता रहता हूं कि विकल्प आत्मा का ज्ञान का स्वभाव है। विकल्प माने आज हमें विकल्पातीत होना है, विकल्पातीत होना है, इस चक्कर में वो ज्ञान का विकल्प ही का निषेध करने लग गए। टोडामली ने लिखा कि विकल्प का हटना उसका मतलब निर्विचार होना थोड़ी है, लिखा ना मोक्ष मार्ग का शक में, इसका मतलब विचार तो करो, विवेक ही खत्म हो जाए, विचार तो, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, वो कैसे खत्म हो जाएगा? तो विकल्प क्या कहते हैं ना, जो भेद करके जानता, निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम, कि ए ए है, ए ए है, ए ए है, ए ए, ऐसा जो भेद करके जानता है उसको विकल्प कहते हैं। और जब वो आत्मा के अनुभव में गया और ऐसे विकल्प भी उसको कदाचित नहीं है, तो भी इस विकल्प का ज्ञान, जो विकल्प ने अभी जाना है ना, वो सब ज्ञान उपस्थित रहता है, कभी तो लब्धि में रहता है, तो ये भी लब्धि का भी एक चक्कर है कि लब्धि वर्तमान पर्याय में प्रगट ज्ञान का नाम है। आप समझिए ना, वो शक्ति जैसा नहीं है, शक्ति तो हम में केवल ज्ञान की है, सारे लोकालोक को जानने की है, और उपयोग में जो चीज सामने आ रही वो है, और लब्धि में वो अभी प्रचन सार का अंग का सारा प्रकरण, पीछे का सारा प्रकरण, समय सार का प्रकरण, फिर जैसे ने क्या अर्थ किया है उनमें, वो सब अभी लब्धि में मौजूद है, और समय समय पर उपयोग में आएगा, फिर लब्धि में चला जाएगा। तो लब्धि ज्ञान प्रगट का नाम, तो कोई लब्धि में रहा, कोई उपयोग में रहा, लेकिन दो चीजें तो जानने में रही ना। इसलिए ज्ञान में अकेला जानना कभी होता ही नहीं है, स्व और पर का अभ्यासन एक साथ ही होता है। देखो अब अपन आगे, सम्यक दृष्टि जीव है, मिल गया तुमको उसी के आगे को स्वपर का ज्ञान युगपद होता है। जब धर्मी जीव का उपयोग पर पदार्थों में होता है तब स्व का ज्ञान पर्याय में लब्धि रूप पड़ा है। ज्ञान की पर्याय लब्धि को छोड़कर एकांत पर उपयोग रूप नहीं हुई है, और जब उपयोग स्व आत्मा में होता है तब पर पदार्थ ज्ञान की पर्याय में लब्धि रूप पड़ा है। यह ज्ञान की पर्याय लब्धि को छोड़कर एकांत से स्व उपयोग रूप नहीं हुई है।
ये बिल्कुल उन्होंने लिखा ना,
और ज्ञान का लब्धि और उपयोग पना एक ही पर्याय में एक ही समय में है, इसलिए साधक और धर्मी जीवों को स्वपर पदार्थों का प्रकाशित होना ज्ञान का होना युगपद माने एक साथ है, एक ही समय में है, समय भेद नहीं है। स्वपदार्थ के उपयोग रूप ज्ञान के समय लब्धि रूप ज्ञान का नाश नहीं होता, अपितु पर के लब्धि रूप ज्ञान का उसी पर्याय में उसी समय सद्भाव है, और पर पदार्थ के उपयोग रूप ज्ञान के समय स्वा के लब्धि रूप ज्ञान का नाश नहीं होता, अपितु स्वा के लब्धि रूप ज्ञान का उसी पर्याय में उसी समय सद्भाव है। इसलिए साधक दशा में भी ज्ञान चेतना युगपद सुपर प्रकाशक होती है। माने साध दशा माने केवल ज्ञान होने पर, और साधक दशा में माने चौथे गुणस्थान से लेकर और बारहवें गुणस्थान तक ये साधक दशा बोलते हैं। तो इन दोनों में स्व और पर प्रति समय प्रत्येक आत्मा के जानने में आते हैं। छठवीं अठारहवीं गाथा में तो लिखा ही है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाहन गोपाल क्या प्रति समय जानने में आ रहा है। तो प्रति समय जब जानने में आ रहा है और पर पदार्थ भी तो जानने में आ ही रहे उस समय, तो दोनों एक साथ जानने में आना हो गया है? दोनों का एक साथ। देखो मुझे इसमें बेछंद भी है और उनके पढ़वाने का लोभ भी है, मुझे अच्छे लगते हैं, गाते हो ना तुम लोग तो बहुत अच्छे लगते, लेकिन मुझे गुरुदेव का बताना था क्योंकि आपकी श्रद्धा वृंदावन में वैसी नहीं है जैसी पूज्य गुरुदेव श्री ने, हमारे साक्षात गुरु हैं, उनसे हमने सीखी है तो मालूम तो पड़ेगा कि वस्तुदेव क्या मानते थे, क्या मानते थे, क्यों एक आध बात कहीं कुछ देख लिया। ये जो इतना है ना यहां पर, मैं ऐसे 100 जगह नहीं 1000 जगह बता सकता हूं, और इस पर 1000 पेज की किताब लिख सकता हूं, लिखूंगा नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि जगह जगह आया ही हुआ है, मैं क्या करूं, मुफ्त में पाटीबंदी में पड़ जाएगी मेरी किताबों, मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा। अब इतनी ताकत, समय भी नहीं रहा मेरे पास, इतनी ताकत भी नहीं है, मेरे दिमाग में बहुत कूड़ा करकट भरा है जो लिखना है, क्या लोग वो लिखूंगा ना मैं, लेकिन मुझ पर लिखते बनेगा कुछ तो। देखो ये छंद भी पढ़ लो तो अपन देख लेते, गुरुदेव का पढ़ा ना, पढ़ो भाई छंद पढ़ो, ये कौन से पेज पे 151 पे।
आत्म निज चेतन स्वभाव करि प्रणवत है निहचे निर्धा, सो चेतनता तीन भाती है यो वरनी जिन चंद उदा, ज्ञान चेतना प्रथम बखानी द्वितीय कर्म चेतना विचार, तृतीय कर्म फल चेतनता है वृंदावन ऐसे उच्चार।
ये क्या है, कौन सा छंद है, सवैया है, कौन सा सवैया, नीचे वाला भी सवैया है, नीचे वाला भी पढ़ेंगे अपन, जैसे मनहन कवित्त लिखा वो भी सवैया ही है। तो ये सवैया इस सवैया में क्या फर्क है, ये 23 सवैया है, इसमें एक लाइन में 23 मात्राएं हैं और नीचे का 31 सवैया है, उसमें एक लाइन में 31 मात्राएं हैं। तो दादा आप जब लिखते हो तो गिन गिन के लिखते हो, गिन गिन की क्या जरूरत है, हम लिखते जाएंगे और तुम गिनने का काम करना है, तुम गिनने का काम करना कि कितनी है उतनी ही निकलेंगी, उसमें गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो गिन गिन के बनाएंगे वो सवैया नहीं बना सकते। अंदर में जो हमारा ज्ञान की धारा बह रही ना, अब उसको हम उस सवैया में ही सोचते हैं, तो निकलता जाता है। क्या कह रहा है समझ में आया कि नहीं आया? जो उग्रसेन ने राजुल से कहा वो हमने जिस छंद में कहा उसी छंद में सोचा है? और हम छंद लिखते गए तो ये पहले से सोच के नक्की नहीं किया था एक मिनट पहले भी, बस उसी छंद में सोचते गए और लिखते गए, बाद में पढ़ा दो अच्छा लगे, ये तो बहुत अच्छा बन गया। ये उनका विचार था, उनके विचार से हम सहमत हो गए कि क्या बैराग 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 इसे कहते हैं है? मैं शादी नहीं करूंगा, मैं दीक्षा लूंगा, इसका नाम बैराग है, है? यदि इसका नाम बैराग होता तो अटल बिहारी वाजपेयी को मोक्ष हो जाता और मोदी को भी हो जाता है? समझ में आया मेरे कहने का मतलब? ये नहीं है बैराग, ये मेरे जो दिमाग में जमा हुआ है वो उग्रसेन ने सोचा मैं क्या करूं, और उग्रसेन उन्हें समझा रहा है दीक्षा लूंगी दीक्षा लूंगी, मेरे पास आती है नेमी नेमी लटती रहती। एक जगह तो ऐसा लिखा है उसमें कि मुझे एक क्षण ऐसा दिखाई नहीं देता है कि तू जब नेमी को भूली हो, कैसे दीक्षा ले सकती है? नेमी को भूलना ये शर्त है दीक्षा लेने की, कि नेमी को भूल नहीं जाना ये शर्त नहीं है। हाँ चलो भाई अपना ये सबैया पढ़ लिया, दूसरा पढ़ो, उसका अर्थ तो क्लियर है ना, मेरे ख्याल अर्थ करने की जरूरत नहीं जितना मैं समझा चुका हूं उसके बाद, पढ़ो जरा।
जीवादिक सुपर पदार्थ को भेद जो तदाकार एक काले जाने जो प्रत्यक्ष है, सोई ज्ञान चेतना कहावत अमल रूप, वृंदावन तिहु काल विच्छेद विलच्छ है। जीव के विभाव को आरंभ कर्म चेतना है, दर्व कर्म द्वार जामे भेदन को गच्छ है। सुख दुख रूप कर्म फल अनुभव जी, कर्म फल चेतना सुभाषी श्रुति छच्छ है।
ये भी सरल है तो भी मैं अर्थ बताऊंगा इसका। जीवादिक सुपर पदार्थ, जीवादिक सुपर है ना, वो सुपर फास्ट नहीं है जी, अपनी ट्रेन जैसा सुपर नहीं है वो। स्वा और पर, इस स्वा का सु हो गया है, क्यों वो ढूंढारी भाषा में हो जाता है, ये जो प्रांतीय भाषाएं होती है ना जिन्हें आप बोलते हुए उन भाषाओं में ऐसा ही प्रयोग होता है, उसको भी सुपर को स्वा सुपर बोलेंगे। सुपर एक काल जाने प्रत्यक्ष, एक ही काल में स्वा और पर दोनों प्रकार के पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसे ज्ञान चेतना, उसे ज्ञान चेतना, सोई ज्ञान चेतना कहावत है, और वो अमल रूप है, क्यों केवल ज्ञान को ज्ञान चेतना बताना ना, इसलिए वो अमल रूप है। वृंदावन कवि कहते हैं कि तिहू काल विशद विलक्ष है, तीनों काल अत्यंत निर्मल है, विशद है, विशद है माने विषदम, हाँ प्रत्यक्ष है, समझे ना, अकेला निर्मल नहीं, वो उनके केवल ज्ञान रूप में प्रत्यक्ष ये बात झलक रही है। और जीव के विभाव को आरंभ कर्म चेतना है, विभाव का आरंभ होना ये कर्म चेतना है बस। अब विभाव में शुभ भाव भी आ गया, अशुभ भाव भी आ गया, दोनों आ गए। आगे इसमें लिखा है क्या भाई, कर्म चेतना अनेक विधेय, लिखा ना क्या क्या है, जीव के विभाव को आरंभ कर्म चेतना है, दर्व कर्म द्वार में भेदन को गच्छ है। ये क्या है, भेद माने अनेक भेद हैं, उनका गच्छ का गच्छ है, गच्छ जानते हो ना, ये श्वेतांबरों में होते हैं गण गच्छ है, ये तपा गच्छ, ये खरतर गच्छ है, जैसे वे भेद हैं ना उनके, ऐसे भेदों का गच्छ है। इसमें शुभ भावों में अशुभ भाव, ये जो चेतना है कर्म चेतना है, तो शुभ का अशुभ भाव अनंत प्रकार के हैं, तो इनके बहुत भेद हैं। उसे कर्म चेतना कहते हैं, भेदन को गच्छे। और सुख दुख रूप कर्म फल अनुभवे जीव, और सुख दुख रूप जो संसार के सुख दुख उनका अनुभव करता है जीव, तो उसे कर्म फल चेतना है ऐसा श्रुति स्वच्छ है। जो अत्यंत निर्मल जिनवाणी है उसने ये बात कही है, एकदम स्पष्ट है ना। ये अपन ने वृंदावन दास जी को भी पढ़ लिया, गुरुदेव को भी पढ़ लिया, और पढ़ लेना, बहुत लंबा है। मैं तो इसको तीन तीन दफे पढ़ता हूं आके भी। जैसे मुझे कल बोलने का विचार था तो कल पढ़ी थी, अब कल नहीं बोल पाई तो आज फिर पढ़ी। इसमें कंजूसी नहीं करता मैं, कहता हूं आपको तो बहुत याद रहता है, याद ऐसे ही नहीं रहता है, निरंतर उपयोग में वो चीज बहती रहती है, तब वो अंदर में वो स्मृति में रहती है, नहीं तो नहीं रहती है। कोई हमारे से कोई अद्भुत संयोग समय ऐसा कुछ नहीं है। यदि किसी में कोई कमी है तो वो ये एकाग्रता की, रुचि की, तीव्रता की उसकी कमी है। कोई बुद्धि मुद्दि कोई की खराब नहीं है। कल एक भाई मेरे से कह रहे थे, अपने मुमुक्षु भाई साहब चले गए, कि मुझे 10,000 फोन नंबर याद है। मैं आपको नहीं बताऊंगा नाम, नहीं तो फिर आप जाके मुझे कहोगे, फिर वो मेरे पास आएंगे, दादा आपने ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो आपको इसलिए थोड़ी कहा था। मेरे से तो वही कहना कि जिसमें कहीं कहना कि नहीं कहना, वो नहीं, वो बच्चा चक्कर में मैं नहीं रहता, मेरे बस की वो काम नहीं है, मेरे पेट में नहीं पचता, रोटी नहीं पचती है तो वो कैसे पचेगा। मतलब वही बात बताना मेरे को जो सारी दुनिया को बताना हो अनिल, जो सारी दुनिया को नहीं बताना है मुझे बताना ही नहीं है? चलो कहां कहां पढ़ रहे थे अपन, देखो अभी एक पेज नंबर 154 निकालो। ये सब इतना पूरा पढ़ के अपन ने आया ना, तीन चार पेज, कितने चार पेज पढ़े इससे, कितने पढ़े हैं, पांच पेज हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और छह पेज पढ़े। अब छह पेज का निष्कर्ष मैंने लिखा है जी नीचे से। देखो इस प्रकार यहां एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, मिल रही निकल आई उसमें, है ना, कोई होशियार आदमी होगा ना वहां जो निकाल लेता होगा। यहां एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि कविवर वृंदावन दास जी तो कहते हैं कि जीव के विभाव को आरंभ कर्म चेतना है, और अर्थात कर्म चेतना विभाव रूप है, और आरंभ में स्वामी जी भी इस बात का समर्थन करते दिखाई देते हैं, किंतु बाद में तत्व प्रदीप का और तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार पर कर्म चेतना और कर्मफल चेतना के दो दो भेद कर देते हैं। ये तो अकेले उसे एक रूप कही थी ना, कौन सा विभाव रूप, फिर जो भेद करते हैं वो शुभ और अशुभ भी कहें तो चले, वो शुद्ध उपयोग भी कहें। आगे देखें, शुद्ध भाव रूप कर्म चेतना और अशुद्ध भाव रूप कर्म चेतना, ऐसे भेद कर देते हैं उत्तम चंद जी। अब जब तुमने विभाव रूप कह दी तो शुद्ध चेतना कैसे कह रहे, शुद्ध उपयोग को कैसे कह रहे, शुभ और अशुभ तो कह सकते हो, लेकिन इसमें कहा है, लिखा है सब। तो ये सब मेरे दिमाग में प्रश्न वहां खड़े हुए, उनका समाधान मैंने किया अध्ययन। इसी प्रकार अतीन्द्रिय सुखरूप कर्मफल चेतना और इंद्रिय सुखरूप कर्मफल चेतना, ये भी दो प्रकार की है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना के भेद से चेतना तीन प्रकार की होती है। यह भगवान आत्मा चेतन है, चेतना रूप परिणमित होता है, इसलिए यह चेतना आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का कोई प्रणमन चेतना का उल्लंघन नहीं करता, तात्पर्य यह है कि आत्मा का प्रत्येक प्रणमन में चेतना विद्यमान रहती है, जिसमें स्वस्वरूप में और परस्वरूप पर रूप में भिन्नता एक साथ ही प्रतिभाषित होते हैं, वह ज्ञान है। जीव के द्वारा किया जाने वाला भाव कर्म वह दो प्रकार का है, निरुपाधिक शुद्ध भाव रूप कर्म और औपाधिक शुभाशुभ भाव रूप कर्म, इस कर्म के द्वारा, कर्म माने कार्य के द्वारा सुख दुख कर्म फल है। शुद्ध भाव रूप कर्म का फल निराकुल सुख है और शुभाशुभ भाव रूप कर्म का फल आकुलता रूप दुख है। आकुलता रूप सुख दुख नहीं, आकुलता तो दुख का लक्षण है ना। आत्म को हित इस प्रकार ज्ञान चेतना धर्म रूप है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना धर्म रूप भी है और अधर्म रूप भी है, क्योंकि वो नुवतिया के भी होती है। ये पेड़ पौधे खड़े हैं ना, ये भी 24 घंटा चेत ही रहे हैं कर्म फल में। ठंडी हवा आई तो उसको भोग लिया, उसको आई वो भोग लिया। ये दो इंद्रिया देखे ना, चींटी वगैरह, ये भी करने का भी विकल्प चल, करने के लिए भी दौड़ रहे, रहने को यहां वहां दौड़ रहे, तो वो कर्म चेतना भी है और मजा भी यार, सुख दुख भी भोग रहे, तो कर्म फल चेतना भी है। देखो, क्योंकि ज्ञान चेतना तो ज्ञानी के ही होती है, पर कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होती है। ज्ञानी को शुद्धोपयोग रूप कर्म चेतना और अतीन्द्रिय सुख रूप कर्म फल चेतना होती है, और कदाचित शुभाशुभ भाव रूप कर्म चेतना और इंद्रिय सुख दुख रूप कर्म फल चेतना भी होती है। किसको? ज्ञानी को। चौथे गुण स्थान से लेकर के जब तक भी पूर्ण वितरकता नहीं हुई है, पर अज्ञानी को सदा शुभाशुभ भाव रूप कर्म चेतना और इंद्रिय सुख दुख रूप कर्म फल चेतना ही होती है। यदि हम ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करें तो सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि चेतना जीव का लक्षण है, वह लक्षण किसी ना किसी रूप में प्रत्येक जीव में पाया जाता है। अमेरिका में एक डॉक्टर महावीर नाम के कोई महानुभाव हैं, महाराष्ट्रियन हैं, महावीर साय। अब आजकल तो वे बहुत बीमार रहते हैं इसलिए आ नहीं पाते हैं, लेकिन कम से कम 25 साल मेरे प्रवचनों में दो चार जगह आते ही आते थे। मैं 8 जगह गया तो 4 जगह वो हाजिर रहते ही रहते थे। उनने अपने 2100 समय सार, वो 2100 छड़ाला का सार वहां बांटे अमेरिका में, घर घर में समय सार पहुंचाया। वो एक बात मुझे बताते हैं हमेशा कि मैं जब समय सार का स्वाध्याय करता था तो मुझे बहुत समझ में नहीं आता था, मैं बहुत परेशान होता था। फिर क्या हुआ कि मैंने एक तरकीब लगाई कि जो आप लिखते हो अंत में, इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है, जैसे लिखते हैं वो तात्पर्य वृत्ति में, हर बात में तात्पर्य 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 लिखते हैं तो टीका का नाम ही लग दिया तात्पर्य वृत्ति। वे आचार्य जो तात्पर्य 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 कहते हैं, वो टीका जिसमें तात्पर्य हर जगह बताया जाता है, ख्याल में नहीं ना, सूत्र तात्पर्य क्या है, शास्त्र तात्पर्य क्या है, तो वो कहते पहले मैं इसे पढ़ता हूं तो सब समझ में आ जाता है, और फिर आपका लिखा हुआ पूरे सब पढ़ता हूं तो मेरे ख्याल में सब आता जाता है। ये बात सिर्फ मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोग भी चाहें इस तरह स्वाध्याय करेंगे तो आपको जल्दी और ज्यादा समझ में आएगा है? और ये समझ लें कि आप ही सब कुछ नहीं हैं, और भी दुनिया में हैं। मैं ही बहुत 30 मार खा हूं ऐसा नहीं समझना। अच्छा अच्छा स्वाध्याय करने वाले गहराई से सारे विश्व के किसी भी कोने में आपको प्राप्त हो सकते हैं गुरुदेव श्री के प्रताप से। फैले गए सब जगह, फैले हुए हैं, क्योंकि वो तो आत्मा के साथ ज्ञान जाता है ना, जहां उनका आत्मा जाएगा वो ज्ञान भी जाएगा, और वो सब चीज वहां पर होती है। तो इस दृष्टि से ये गाथा जो अपन ने प्रतिज्ञा की थी पूरी हो गई, मेरे ख्याल से समय भी हो गया है, अब अपन कल 125वीं गाथा चलाएंगे।